ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथ शिष्यं श्री शंकराचार्यमथ पद्म पादं च हस्तमलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांतिः 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 चंद्रशेखर 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 आहि मां चंद्रशेखर 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 आहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाही मां, चंद्रशेखर चंद्र चंद्रशेखर पाही मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर रक्ष मां, चंद्रशेखर रक्ष मां। ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी का प्रसंग विगत 4 वर्षों से निरंतर चल रहा है। अभ्यास के लिए 93वां श्लोक 93। सोम कला धर्मौलौ कोमल घन कंदरे महामहसि, स्वामिनी गिरिजानाथे मामक हृदयं निरंतरं रमतां, सारसनाते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः, ज्ञायेयौ यो भर्गं वदति इच्छते सदार्चतः स्मरति। अतिमृदुलौ मम चरणौ अतिकठिनं ते मनो भवानी स इति विचिकित्सां संत्यज, शिव कथमासीद् गिरौ तथा वेशौ, धैर्यं कूशेन निवृतम् रवसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया, पुरहर चरणालाने हृदयमभेद मदेभं वधान चित्यन्त्रैः, प्रचरत्यभित प्रगल्भवृत्त्या मदवाने समनः करी गरीयान्, परिग्रिय नयेन भक्तिरज्ज्वा, परमस्थाणुपदं दृढं नयामुम्, सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां, साधुवृत्तां सुवर्णां, సద్వి సంస్తూయమానాం సరసగుణయుతాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యం ఉద్యద్భూషా విశేషముపగత వినయాం ద్యోతమానార్థరేఖాం కళ్యాణీం దేవగౌరీ ప్రియ మమ కవిత కన్యకాం త్వం గృహాణ. శంకరాచార్యజీ మహారాజ్ భగవాన్ శివ కి స్తుతి కర్తే హుయే శివ కే సాన్నిధ్య మే అనేక భావ వ్యక్త కర్తే హై. ఉసి క్రమ మే ఇస్ శ్లోక్ కే ద్వారా భగవాన్ శివ కే లియే చార్ సంబోధన్ ప్రయోగ్ కియా హై. 21 श्लोक में चार संबोधन. इन संबोधन में क्रिया विशेषण, गुण विशेषण, और भाव विशेषण यानी अवस्था विशेषण, इनका प्रयोग हुआ है. पहला संबोधन है सोम कला धर्म औलौ. इसमें हे जोड़ लेना, क्योंकि संबोधन में वो हे अये संस्कृत का शब्द प्रयोग करते हैं. वो गुरु हो हे शंभो अये शंभो आदि आदि संबोधन के शब्द हैं. मौल शब्द का अर्थ तो सिर मुकुट. सोम कला धरा, सोम शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा. सोम का अर्थ अमृत, सोम का अर्थ चंद्रमा. सोमो भूत्वा रसात्मकम् पुष्पामि चौषधि सर्वाः. सोमो भूत्वा रसात्मकम् मैं रसरूप सोम होकर पृथ्वी में प्रवेश करता हूं, और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले समस्त वनस्पतियों को मैं पुष्णामी पोषण करता हूं, पुष्ट करता हूं. ये गीता वाक्य है और यहां शिव जी को संबोधन है. ऐसा जो सोम है चंद्रमा, मौलौ धरः अपने मस्तक में मुकुट के रूप में जिन्होंने धारण किया है, ऐसे भगवान को सोम कला धर मौलौ ये संबोधन हुआ. ये क्रिया विशेषण है. क्योंकि ये समुद्र मंथन में आप लोगों को पुराण की कथा याद है, मालूम है. ये स्तुति में ज्यादा करके पौराणिक प्रसंगों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्तुति में गुणों का ही प्रयोग किया जाता है, और जब गुणों का प्रयोग करते हैं तो वो स्तुत्य सगुण हो जाता है। इसलिए आप लोग पुष्पदंताचार्य विरचित शिव मेमने स्तोत्र पढ़ते हो, पुष्पदंताचार्य जी ने एक जगह लिखी है, पदे त्वर्वाची ने पतति न मन कस्य न वच, अतीत पंथानां तवच महिमा वाङ्मनसयो अतद्व्यावृत्यायां चकितम विधत्ते श्रुत्यपि स कस्य स्तोतव्य। जब श्रुति वाक्य भी आपके बारे में कुछ कह नहीं पाते हैं तो हमारे जो मन और वाणी भी आप के स्वरूप को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, तो इस अवस्था में आप कस्य स्तोतव्य अर्थात न कस्यापि स्तोतव्य, तो आपकी स्तुति कौन कर सकता है, कौन स्तुति कर पाएगा। तो किसी भी हालत में आप स्तुत्य नहीं है, किसी भी हालत में आप स्तुत्य नहीं है। आपकी स्तुति कैसे करेंगे आप, स्तुत्य होते तो आपकी स्तुति कर सकते करते। क्योंकि श्रुति जब आपकी महिमा से महिमा में पहुंच नहीं सकती है, चकितम थकितम, आपके महिमा का वर्णन करते करते थक गई श्रुति और चुप होकर बैठ गई, जाने दो। श्रुति अंत में ये कहने लगी जाने दो। फलश्रुति में भी लिखा है ना पुष्पदंताचार्य जी ने, अजित गिरी समम स्यात, तभी तव गुणानाम ईस पारम नहीं आती। कल्प वृक्ष का कलम बनाया, समुद्र को मस्सी बनाई, पृथ्वी का कागज बनाया और शिव के गुण लिखना शुरू किया, फिर भी सरस्वती ने नहीं लिख पाई, अंत में कलम तोड़ ताड़ के फेंक दिया, जाने दो, ये संभव ही नहीं है। थकितम स कस्य स्तोतव्य, न कस्यापि स्तोतव्य, तथापि वास्तविकता तो यह है, फिर भी मैं इस बात को जानता हूं कि आप स्तुति का विषय नहीं हो सकते, तो फिर क्यों स्तुति करने के लिए बैठा है हाथ जोड़कर आगे। पदे त्वर्वाची ने पतति न मना कस्य न वच, एक बात तो ये पक्की है कि आपके अर्वाचीन रूप है ही ऐसा है, आपके अर्वाचीन रूप है ही ऐसा है। प्राचीन रूप तो क्या है, अतीत पंथानम तव च महिमा बांग मनसया, आपका पारमार्थिक असली स्वरूप तो मन और वाणी के पहुंच से परे, इसके बावजूद ही आपका नकली जो स्वरूप है, अर्वाचीन न्यू मॉडल, अर्वाचीन माने न्यू मॉडल, ठीक बोला मैंने अंग्रेजी, अर्वाचीन का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही वही है न्यू मॉडल। अब वो मॉडल जो है चाहे सतयुग का हो, चाहे त्रेतायुग का हो, चाहे द्वापर युग का हो, चाहे कलयुग का हो, ये है तो मॉडल ही हो। तो आपकी जो ये अर्वाचीन जो रूप है ये है ही ऐसा। पतति न मना कश्य न बचा, उस अर्वाचीन रूप में किसका मन नहीं पहुंचता, किसकी वाणी नहीं पहुंचती, अर्थात सबका मन पहुंचता है, सबकी वाणी पहुंचती है। तो मैं स्तुति करने में प्रवृत्त हुआ हूं तो अर्वाचीन रूप की स्तुति के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, पारमार्थिक रूप की स्तुति तो मेरे बाप के द्वारा भी संभव नहीं है। समझे कि नहीं? मां थक गई तो और क्या, सरस्वती थक गई, हम किस खेत की मूली है। तो ये अर्वाचीनी रूप है स्तुति का विषय होने वाला। सोमकला धर्म मौलव ये अर्वाचीन रूप है। तो आप लोगों ने पुराण का प्रसंग सुना है, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट निकला, जहर निकला, उस पदंताचार्य जी ने उस दृश्य को एक श्लोक में इस तरह आबद्ध कर दिया पूरे दृश्य को, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा विधेयस्या सिद्ध्य त्रिनयन विसंसमृतवत। बिना समय में ब्रह्मांड क्षय, ऐसा लगा कि पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए उस कालकूट के चलते। समय में यदि ब्रह्मांड अच्छे हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। समझे कि नहीं? फल पकने के बाद गिर जाए तो किसी को आश्चर्य होगा? बाप बूढ़ा होने के बाद मर जाए किसी को आश्चर्य होगा? बोलो, मां बूढ़ी होने के बाद मर जाए तो किसी को आश्चर्य होगा? हैं? आश्चर्य कब होगा? बेटा जवान है, मर गया, अप्रत्याशित हो गया ना, वो कल्पना ही नहीं कर रहे थे कि मर जाएगा। हैं? तब वहां चिंता सताती है। आपके पिताजी कहां गए? बोले हमारे पिताजी देव थई गया। हैं? केम? अरे गरड़ा थई गया था, वृद्ध हो गए थे, उम्र हो गया था। अपने आप कहना पड़ता है कि नहीं? बोलो, उम्र हो गया था, रोग भी थी, शुगर भी था, प्रेशर भी था। ये देख लो, इसका मतलब हम प्रिपेयर हो चुके थे कि वो पूरी की तरह मरने की तैयारी में है, और तैयारी से मर रहे हैं तो इसका मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अचानक कोई मर जाए तो। यहां क्या हुआ? अचानक ब्रह्मांड क्षय, कैलकुलेशन करते हैं तो ब्रह्मांड क्षय होने का समय आया नहीं, और अवस्था देखते हैं तो बिल्कुल ब्रह्मांड क्षय होने की अवस्था में पहुंच गए। चकित भीत देवासुर नरे, देखो मनुष्य भी भयभीत हो गए, असुर भी भयभीत हो गए, देवता भी भयभीत हो गए, तब क्या करें भाई? कृपा विधेय इन सब पर समष्टि रूप में पक्षपात किए बिना सबके ऊपर कृपा करते हुए विषम समृतवत, विषय का संहार कर लिया, तो देवताओं को बड़ी शांति मिली, चलो खतरा टल गया। बच गए, खचड़ा खतरा ढल गया। कहते हैं ना अभी नेपाल में जो भूकंप आया, भूगर्भविदों का एक मान्यता है कि वो भूकंप जितने रिएक्टर स्केल में आ गया है, आना चाहिए था उतने में नहीं आया, वो 9 से कम का तो आना ही नहीं चाहिए था। भूगर्भविद कहते हैं कैलकुलेशन करके 9 से कम का नहीं आना चाहिए था, 9 से ऊपर का ही आना चाहिए था, लेकिन 8 स्केल का आ गया, गनीमत है आ गया। बाकी वो स्केल 8 और 9 का जो कैलकुलेशन है वो पूरा करना है, तो बोले उस 9 स्केल को पूरा करने के लिए दिन में 5-6 झटके लग रहे हैं, ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। अब ये प्रतिदिन 2 महीना हो चुका है, अभी भी झटके लग रहे हैं, 4 स्केल का झटके लगे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये झटके अभी न लगते तो फिर दोबारा कोई 9 स्केल का ही आना संभव था, वो आता भी, तो उसका पावर 6 हो रहा है, अंदर प्लेट जो है सेटिंग कर रहा है, इंडिया प्लेट और तिब्बतियन प्लेट क्या बोलते हैं वो सब वो सेटिंग हो रहा है, उस बीच में ये झटके आ रहे हैं, ये आना अच्छा है कहते हैं, है ना। तो हम लोग भी जरा तसल्ली में बैठे हैं, आना अच्छा है तो आते रहे, कोई बात नहीं है, तो आदि हो गए। पहले तो मन से हिलता था तो भी आ गया भूकंप ऐसा लगता था, तब फिर समुद्र मंथन शुरू किया, खतरा टल गया ना, विषम समृत बता, तो फिर सोम निकला, चंद्रमा, वो भी समुद्र के अंदर ही था, तो चंद्रमा निकला। भगवान शिव ने कहा कि अरे ये भी मुझे दे दो। बोले महाराज ये तो अच्छी चीज है, आपको कैसे दे। बोले बेटा वो जो जहर पिया है ना, कंठ में गर्मी है, पूरे शरीर आग से जहर से तप रहा है, तो ये जो सोम है मस्तक में धारण करेंगे तो ठंडक रहेगी, नहीं तो इसको पचाना हमारे लिए मुश्किल है बेटा, दे दो भाई। और यदि कदाचित हम इसको ये जहर को पचा नहीं पाए, फूड पॉइजन हो गया तो वॉमिटिंग करना पड़ेगा कि नहीं है, फिर वॉमिटिंग होगा, फूड पॉइजन हो गया तो पचेगा नहीं तो फूड पॉइजन होगा, फूड पॉइजन हो गया तो वॉमिटिंग करना पड़ेगा, फिर वो बाहर आएगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी। अरे महाराज तब तो धारण करो, धारण करो, दे दिया। भगवान शिव ने उसको मस्तक में धारण कर लिया। वैद्य लोग कहते हो पांव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आओ वैद्य तो मारो ठंडा, तेरे काम नहीं है यार, जा, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। किसके? वैद्य के, डॉक्टर के काम नहीं है। कहां, कब? पांव गरम, पेट नरम और सिर ठंडा रहे तो वैद्य के काम नहीं है। वैद्य आ भी गया तो मारो डंडा, उसको भगाओ, तो खाली हमारे पैसा लूटने के लिए आ रहा है, तेरी आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि हम पांव गरम, पेट नरम, सिर ठंडे वाले हैं। अब सोम कला धर्म उले, अब भगवान ने सिर में चंद्रमा धारण किया है, तो सिर गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा? हैं? ठंडा रहेगा तो अब वैद्य की क्या आवश्यकता है? फिर वो जहर क्या असर करेगा? सिर ठंडा है तो काम बन गया भाई। और हमारे तो हालत ये है कि सिर हमेशा गर्म रहता है, इसलिए वैद्यों के डॉक्टरों के पीछे दौड़े रहते हैं। है? पेट नरम होना चाहिए, वो कठिन होता है कब्जियत के चलते। सिर ठंडा होना चाहिए, गर्म होता है व्यवहार जटिलता के चलते, राग द्वेष के चलते। हाँ, तब से भगवान शिव का नाम पड़ा सोमकला। चंद्रमा सकल है, सकल कला से युक्त है। और जिस समय भगवान शिव ने जो चंद्रमा धारण की, उस समय वो चंद्रमा दो कला से युक्त था। द्वितीय का चंद्रमा दो कला, पूर्ण कला नहीं, दो कला, इसलिए कला शब्द किया। सोम कला धर्म उलू, और ठीक उसके साथ साथ में दूसरा संबोधन कर दिया, कोमल घन कंधरे, कंधर माने कंठा, इसलिए व्यवहार में भी कंधा बोलते हो ना, कंधे में जो धारण हो वो कंधर कंठा। कैसा था वो कंठ में जो धारण किया था? कोमल घन, घन माने बादल, कोमल माने नया, बरसने के लिए चौमासे में तैयार हुआ हुआ बादल, कोमल घन। अभी अभी मानसून के द्वारा अभी वर्षा, मानसून आया नहीं लेकिन आने की तैयारी में है, इसलिए उसको विशेषण दिया कोमल घन। समुद्र में से अभी अभी बादल जब उठकर आकाश में आए हैं, कैसे होते हैं तो काले काले बादल, है ना, कोमल घन। कंधरे उपमा है, कोमल बादलों के, नए बादलों के समान रंग वाला कालकूट, जिसको प्रसिद्ध भाषा में उनके लिए नीलकंठ शब्द प्रयोग हुआ, और उस बादल का विशेषण नील या कोमल काले, घन घन माने बादल, इसलिए किसी ने भजन गाया है ना, घन आए घन श्याम न आए, घन आ गए लेकिन घनश्याम नहीं आए। हे कोमल घन कंदरे, सोम कला ये बुद्धि का प्रतीक है, कोमल घन कंदर ये विषयों का प्रतीक है, विषन विषय सेवन करो लेकिन बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक विषय का सेवन करो, विचार पूर्वक यदि विषय का सेवन करते हो तो वह विषय सेवन करने वाले को नुकसान नहीं करता, समझे ने? विष हालांकि नुकसान करने वाली चीज है लेकिन वही विष भी विचार पूर्वक यदि सेवन करते हो तो नुकसान नहीं कर सकता है। विषस्य विषम औषधम, आयुर्वेद में ये वाक्य आता है, विषस्य विषम औषधम, विष को नष्ट करने के लिए विष का ही प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाकर वो विष औषधि का काम करेगा। तो समझदारी होगी जब उसका जानकारी होगी तो बुद्धिपूर्वक सेवन करेंगे तो वो विष औषधि का काम करेगा, और राग और द्वेष पूर्वक आसक्ति पूर्वक विषय का सेवन करते हैं तो वही विषय विष के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर वाक्य लिख दिया है, मुझे प्रसंग में वो आ जाता है, याद में आ जाता है श्लोक, तो संगति लगाकर व्याख्या कर दिया करता हूं। विषस्य विषयाणां च दृश्यते महदंतरम्, विष और विषय में क्या अंतर है? शंकराचार्य जी कहते हैं बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। साधारण व्यक्ति विषय समझ नहीं पाएगा। विषय किसको कहते हैं? विष तो समझ रहा है, उसको विष कहेंगे जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति मर जाता है, प्राणी मर जाता है। लेकिन विषय की परिभाषा क्या है बोलो? इस माला का नाम विषय है, समझे कि नहीं? इसका नाम क्या है? विषय है। पीला, सफेद, हरा आंख का विषय है, सुगंध आ रहा है नाक का विषय है, ठंडा है स्पर्श का विषय है, कड़वा मीठा जिह्वा का विषय है, विषय तो है नहीं, तो इसका नाम विषय है। और विष तो दुकान में मिलेगा, विषय कहां मिलेगा? विषय तो जहां भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बोलो? विषय तो जहां भी मिल रहा है, मिल ही रहा है, मिलेगा। और विष तो कहीं ना कहीं दुकान दुकान में मिलेगा भाई, तो विषय सेवन से कोई मरता हुआ देखा है तुम लोगों ने? और विष सेवन से मरे हुए पत्र पत्रिका में भरता रहता, भरा हुआ रहता है, विषपान करके उसने जान दे दी, मर किया आदि आदि। और सुनते ही हम डर जाते हैं विष का नाम सुनते ही। तो शंकराचार्य जी ने शिष्यों से पूछा, अरे बेटा विष और विषय में क्या अंतर है? उसने कहा, महाराज विष सेवन करते ही मर जाता है, विषय जितना सेवन करे तो भी नहीं मरता है, यही ना बोलो? रोटी जितने खाओ कोई मरे? रोटी खाकर कोई मरा है? पकौड़ा खाकर कोई मरा है? रसपूरी खाकर कोई मरा है? अब रस का तो जमाना गया, बारिश गई, अब श्रीखंड पूरी खाओ। शंकराचार्य जी कहते बेटा विष और विषय में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है महाराज? उपभुक्त्वा विषमहंती, विष जो है सेवन करने पर ही जिह्वा और विष का जब संयोग होगा, रसन इंद्रिय और विष का संयोग होगा, तभी विष असर करता है, अपना प्रभाव छोड़ता है। लेकिन जब तक रसन इंद्रिय और विष का संयोग नहीं होगा तो विष असर नहीं करेगा। शरीर में किसी भाग में विष का प्रवेश होने पर भी वह विष रक्त के कणों के माध्यम से, प्रवाह के माध्यम से रसन इंद्रिय में पहुंचेगा, तभी उसका असर होगा। अन्यथा रसन इंद्रिय में न पहुंचे तो शरीर के किसी अंग तक ही वह विष सीमित रहे तो उतने से व्यक्ति मरता नहीं। इसलिए हमें समझाया जाता था, तुम लोग तो शहरी हो, बंबई वासी हो, हम तो पहाड़ी हैं, गांवड़े हैं, गांवड़िया हैं, समझे कि नहीं। तो समझाया जाता था बचपन में, तो सर्प बहुत होते हैं गांव में, जंगल में, घास में, घासों में, खेती में, किसान तो खेती करने वाला होता है, गांव में गाय के लिए घास काटने जाओ, है ना, खेती के लिए पानी लगाने जाओ, नलाई गुड़ाई करने जाओ, तो ये समझाया जाता था कि यदि सर्प ने काट लिया, सर्प डंश कर ली, तो तुरंत तुमको जहां पर सर्प ने काटा है उससे ठीक ऊपर जोर से कस के रस्सी बांधो, तुरंत ही, और कुछ नहीं। वो सिखाया जाता था, क्यों महाराज, ताकि वो सर्प का विष रक्त के माध्यम से और शरीर के और अंगों में न जाए, वहीं तक सीमित रह जाए, जिह्वा तक न जाए। तो फिर ये कहा जाता था, फिर कस के बांधने के बाद जहां उसने सर्प ने डंश मारी है, विष पड़ा हुआ हो, वहां पर ब्लेड से या किसी हथियार से चीरा लगा दो और निचड़ना शुरू करो, वो रक्त सब बह के चला जाएगा, तो रक्त के साथ विष भी निकल जाए। ये घरेलू नुस्खे हैं, ये देखो, कोई बड़ा भारी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि होश समझदारी होश और होशियारी वहां तत्काल प्रयोग करोगे, बस बांध दो यहां। अब सर्प विशेष करके या तो पांव में काटता है या फिर हाथ में काटेगा, या तो चलते चलते उसके शरीर में पांव पड़ेगा तो वो फट से काटेगा पांव में, या फिर घास काटते या कहीं करते तो वो पकड़ में आएगा तो फट से हाथ में डंश मारेगा, वो आके सिर में तो मारेगा नहीं, पेट में तो मारेगा नहीं। अब हाथ में यदि डंक मारा कहीं तो ऊपर बांध दो और ये चिरा लगा दो, रगत इधर का रक्त चला गया, जहर निकल गई, बाद में खोल दो ठीक हो गया, रस्सी खोल दो, ब्लड सर्कुलर चालू। पांव में डंक मारा तो ऊपर घुटने के नीचे जोर से कसते हो रस्सी, ब्लड सर्कुलर बंद हो गया, और चीरा लगा दो निकल गया। तो जिह्वा तक उस विष नहीं पहुंच पाएगा, तो व्यक्ति शरीर के अंगों में विष रहने पर भी वो मरेगा नहीं। तो शंकराचार्य जी कहते उपभुंत्वा विषम अंते, विष तो सेवन करने पर ही उसको नुकसान कर सकता है, विष का नाम सुनकर असर करेगा। बोलो, आंख से देखने पर असर करेगा, विष को आंख से यदि देख लिया तो क्या उसका असर करेगा, विष के बारे में सुन लिया असर करेगा, विष को छू लिया असर करेगा, बाहर सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रक्त के साथ मिलकर जिह्वा तक पहुंच गया तब असर करेगा, वो बाहर स्किन से छूने मात्र से तो उसका कोई प्रभाव नहीं। शंकराचार्य बोलते विषय तो विष से भी खतरा है इस अर्थ में, क्योंकि विषय के बारे में सुना की असर कर जाता है। विषय कितना खतरनाक है बोलो, विषय के बारे में तुमने सुना की असर कर गया, देखा की असर कर गया, छुआ की असर कर गया और छूने की भी बात छोड़ दो, देखने की भी बात छोड़ दो, सुना असर कर गया और बैठे बैठे याद किया तो असर कर गया। लेव जी अनुभव किया कि नहीं तुम लोगों ने, हैं? बैठे बैठे याद किया तो असर कर जाएगा, हैं? रावण ने सीता के सौंदर्य के बारे में शूर्पणखा के मुख से केवल सुना, सीता का रूप देखा ही नहीं था वो, केवल सुना था उसने। शूर्पणखा ने जाकर कह दिया रावण को, क्या बताऊं भैया, एक औरत जंगल में आ रही है, आई कहां से आई ये पता नहीं, दो पुरुष उसको लेकर घूम रहे हैं, एक औरत है और दो पुरुष हैं, और उस औरत का सुंदरता, उस औरत की सौंदर्य इतने अद्भुत है, इतने अद्भुत है कि मैं खुद ही सम्मोहित हो गई। और उस समय मैंने विचार किया कि इतनी सुंदर औरत तो असुर राज रावण को ही शोभा देता है, अब ये जंगल में भटक रही है, क्यों ना उसको इस तरह से समझा के पटा के तुम्हारी भारिया बना दूं, तुम्हारे पास लाऊं। ये सोचकर हम उससे वार्ता करने के लिए, उसको पटाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करने लगे, वो जो दो पुरुष थे उसमें से एक छोटा वाला था, उसने ये हाल कर दिया, भैया कुछ भी हो तुम्हारे राजमहल में, तुम्हारे लंका में दुनिया के बढ़िया सा बढ़िया सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो स्त्री यदि तुम्हारे राजमहल में तुम्हारे साथ सिंहासन में न बैठे तो ये और सारा कस होना सब बेकार है। किसने कह दिया? शूर्पणखा ने कहा। रावण ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, सुन लिया, अब असर कर गया कि नहीं बोलो। रावण की मृत्यु का कारण क्या हुआ वो सुनना, जब तक नहीं सुना तब तक मृत्यु सामने नहीं आई, और सुना कि बस उसने प्रयत्न कर लिया, मैं जैसे जिस तरह से भी उस औरत को ला कर ही छोड़ूंगा, ऐसी सुंदर है तू। वो सारा षड्यंत्र किया, आखिर क्या हुआ, शूर्पणखा तो ये कह के गई और अंत में मंदोदरी क्या कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। देव जी तो ये उदाहरण और इससे क्या सिद्ध हुआ, विषय विष से भी खतरनाक है। रावण जहर खाकर मर सकता है कि नहीं बोलो, हैं? बोलो जवाब दो, नहीं मर सकता, जहर खाकर रावण नहीं मर सकता, क्यों, नाभि में अमृत है, शास्त्र नहीं पढ़ी है, प्रसंग नहीं सुना है, जन्मजात नाभि में अमृत लेकर आया, और नाभि में अमृत रहते हुए रावण को मारने का कोई उपाय नहीं है। जहर खाकर भी नहीं मर सकता है, आग में कूदकर भी नहीं मर सकता है। लेकिन रावण मर गया कि नहीं, किससे मरा? विष से मरा कि विषा यह से मरा? शंकराचार्य जी ने समझा दिया बेटे को, शिष्य को। विषस्य विषयाणाम च दृश्यते, विवेक थोड़ा मणि का सुनो, विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतरम उपभुंक्त्वा विषम हन्ति विषया चक्षुषा प्ययम्। विषय को तो देखते ही असर कर जाएगा, विषय इतना खतरनाक है। और शंकराचार्य जी ने फिर दूसरा दृष्टांत दिया, वहां विष सेवन करके नष्ट होने वाला केवल विष का प्रभाव पड़ता है केवल अन्नमय कोष में। किसका प्रभाव पड़ेगा? विष का। कहां? सिर्फ अन्नमय कोष में पड़ेगा। विष का प्रभाव प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष में नहीं पड़ता, यानी सूक्ष्म शरीर में विष का प्रभाव असर नहीं पड़ता। विष पान करके मरने वाला व्यक्ति मर गया विष पान करके, वो स्वर्ग जाएगा तो विष का असर लेकर जाएगा कि नहीं? उसके साथ विष का प्रभाव जाएगा कि नहीं? है? जाएगा कि नहीं बोलो? नहीं जाएगा ना? नरक जाएगा तो विष का प्रभाव जाएगा कि नहीं? है? नहीं जाएगा, क्योंकि विष का संबंध अन्नमय कोष से है। अन्नमय कोष यही है, अन्नमय कोष आग लगा के डड़ा जला देंगे, खत्म हो गए विष का प्रभाव। तो विषय का जो चिंतन है वह सूक्ष्म शरीर में असर करता है। स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी विषय का जो चिंतन है वो जन्म जन्मांतर जाता है, जन्म जन्मांतर है, तब खतरनाक क्या है? विष से तो एक जन्म का नुकसान होगा और विषय से अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे। विषयाशक्ति पूरी, इसीलिए तो गीता में और उपनिषदों में ये कहा गया है, योनिमन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। और गीता में क्या कहा? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ति कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये क्या है? ये विषय का असर है। जो जो विषय का तुम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हो, शरीर छोड़ने के बाद तत्त उसके स्मरण किए अनुरूप ही उसको दूसरा जन्म की प्राप्ति होती है। बस समझे कि नहीं? कई उदाहरण, राजा भरत विषय का चिंतन करते करते मरे, परिणाम क्या हुआ? यदि विष खाकर मरता तो राजा भरत को इतना नुकसान न होता, एक जन्म जाता। लेकिन विषय चिंतन, हाय मैंने पाला, मैंने रक्षा की, मैंने बचाया, अब मैं मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद इसकी रक्षा कौन करेगा, इसका क्या होगा? ये क्या है? विषय चिंतन है कि नहीं बोलो? परिणाम क्या हुआ? मनुष्य योनि में जन्मा राजा, पशु योनि में जाकर पैदा होना पड़ा कि नहीं, क्योंकि मरते समय पशु का चिंतन किया, पशु योनि में चला गया वो। ये देख लो तो खतरनाक क्या है। शंकराचार्य जी 1200 वर्षों से चिल्लाते रहे, हम जहां के वहीं हैं, हम फिर भी विषय के प्रति ही आ सकता है। विषय नहीं मिला तो बवाल खड़ा हो गया। पत्नी को कहता आज पकौड़े बनाना, उसको फुर्सत नहीं हुई, नहीं बनाई, और पकौड़े के जगह उसने क्या बना दी, सूखी बाजरे की रोटी। बवाल शुरू कर दिया और तो बाजरे की रोटी में जो स्वाद आता वो भी गया है। बड़े प्रेम से खाता तो क्या स्वाद आती बाजरे की रोटी में, ज्वार की रोटी में। अब जो स्वाद था, जो रस था, वो रस भी सुखा दिया भाई, बवाल कर दिया। कोमल कन्नर घन कन्नरे, तो ये विषय का प्रतीक है। विष क्या है? विषय का प्रतीक है विषय। अच्छा, चंद्रमा क्या है? बुद्धि का प्रतीक है विषय। बुद्धिपूर्वक होशियारी पूर्वक सेवन करो तो विषय तुम्हारे लिए नुकसान नहीं कर सकता। जैसे विषपान करने पर भी मस्तक में सोम धारण करने के चलते भगवान शिव को कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसलिए किसी ने कहा ना, मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश है। मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश। बकरे ने मैं किया तो कटाया शीश है। बकरे ने मैं कहा तो कटाया शीश। मैना ने मैना कहा मोल भय दस बीस। मैना का तो मूल्य हो रहा है, सब आदर कर रहे, बड़ा प्रेम कर रहे, और बकरा बिना मतलब का म्या करता रहा, कट गया से। मैना भी म्या करती तो कोई पूछता उसको? लेकिन मैना को कोई काट के खाता है? मैं करने वाले को जिंदा कोई नहीं छोड़ता है। बकरी ही दाने वाली है ना, मैं करता के लिए तो यही ठीक है। शंभु भय जगदीश। सोम कलादर मऊलौ कोमल घन कंदरे महामहसी। तीसरा संबोधन है महामहसी। मह माने प्रकाश, महामहसी माने महान प्रकाश स्वरूप। ये महामहसी का अर्थ था वो पुष्पदंताचार्य जी ने तवैश्वर्य यत्नादि यदुपरि विरिंची हरिरथ परिच्छेत्तुम याता। ज्योतिमय ज्योतिर्लिंग अग्निमय पुंज अग्निपुंज जो लिंग वहां प्रकट हुआ उसको पता लगाने के लिए ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे गए, पता लगा नहीं सके। उस अग्निमय लिंग का नाम महामहसी, महान प्रकाश स्वरूप, जाज्वल्यमान प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्लिंग। यदा आदित्यगतम तेजो जगद्भासयति अखिलम यच्चंद्रमसी चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम महामहसि। ये अर्जुन, अग्नि में जो तेज है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, सूर्य में जो प्रकाश है, वो प्रकाश छोटा है और उसमें जो प्रकाश पहुंचा है वो मेरे से पहुंचा होने के कारण मैं महामहसि। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हे शिवा, आप महामह है। महामह, महा माने प्रकाश। चौथा संबोधन है गिरिजानाथे। गिरिजा का पति स्वामी नाथ, हे गिरिजानाथ, हिमाल पार्वती के पिता पर्वतराज हिमाल है ना, और नारद जी के कहने के बाद हिमाल ने कहा कि पार्वती की विवाह शादी शिव से ही करना है, और हिमालय पर्वत शिव जी से अपनी कन्या से पाणि ग्रहण करने के लिए हजार अनुनय विनय करते रहे, शिव जी ने स्वीकार नहीं किया। अब शिव भगवान शिव पार्वती से शादी कर ले गए, इसके लिए कामदेव ने हजार कोशिश की, कामदेव भी सफल नहीं हुआ। लेकिन जब पार्वती ने विचार किया कि पिताजी के कहने से भी शिव राजी नहीं हुए, कामदेव के प्रयत्न से भी शिव राजी नहीं हुए, तब शिव को राजी तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तब पार्वती ने स्वयं तपस्या आरंभ की, और उस पार्वती के तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव ने खुद ही वरण किया। शिव जी ने पार्वती को अपने आप ही वरण किया। इसलिए उमानाथ हो गए, गिरिजानाथ। स्वामिनी गिरिजानाथे मामक हृदयम निरंतरम रमताम। आप निरंतर मेरे हृदय में ही विचरण करें, मेरे हृदय को छोड़कर इधर उधर न भटके। मामक हृदयम निरंतरम रमताम। आगे फिर शंकराचार्य कहते हैं, सारसना ते नयने तावेव करौ सैव कृतकृत्यः या ये यौ यो भर्गम वदति इच्छते सदार्चतः स्मरति। सा रसना, इसलिए तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिख दिया है ना, भगवान का नाम स्मरण न करने वाली जो जिह्वा है वह धरती के बील में रहने वाले सर्प की तरह है, तुलसीदास जी ने कहा है। जिह्वा दादुर केरी है, वो जिह्वा को सर्प कहना चाहिए जिस जिह्वा से भगवान का स्मरण न हो। तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं वही जिह्वा असली जिह्वा है, सही रूप में जिह्वा है, जिस जिह्वा से भर्गम बदती, सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा भर्ग उसके गुणानुवाद का गान करता हो। तो सा रसना, नहीं सा रसना, या रसना सा भर्गम वदति, वही जुवा का सार्थक है होना जिस जुवा से परमात्मा के दिव्य गुणानुवाद का गान हो। मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च तत्कथनम तत् प्रबोधनम अन्योन्य यत् प्रबोधनम। जुब्बा की सार्थकता मेथी के गोटे खाने के लिए नहीं है। मेथी का गोटा समझ गए ना, गुजराती लोग समझ गए, तुम लोग नहीं समझे। मेथी का पकौड़ा है, गोटा माने पकौड़ा है। जुब्बा की सार्थकता उसके लिए नहीं है। अपने रुचिपूर्वक विषय सेवन करना ही जुवा की सार्थकता नहीं है, ये तो सुखी चमड़ी और सुखा हड्डी मिल जाए तो कुत्ता भी समझेगा मैं कृतकृत्य हो गया। होगा कि नहीं बोलो? सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा मिल जाए तो कुत्ता भी कृतकृत्य मानेगा अपने को। तो फिर कुत्ते के जिह्वा में और तुम्हारे जिह्वा में अंतर क्या रहेगा? लेकिन कुत्ते का जिह्वा भर्गम न बदती, परमात्मा के दिव्य गुणानुवाद नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इसलिए उसके जिह्वा सार्थक नहीं है, उदरार्थक है। उसके जिह्वा क्या है? सार्थक नहीं है, उदरार्थक है। और तुम्हारी जुवा भी उदरार्थक ही हो गई तो क्या अंतर रह गया? हमारी जुवा भर्गम बदती, तभी जुवा सार्थक है। सारसना या के साथ अन्वय कर लेने, या भर्गम बदती सारसना सार्थकम। ते नयने, ये नयने जो नयन भर्गम इच्छते, भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करता है, भगवान के दिव्य अनेक जो रूप है अर्वाचीन रूप, उन अर्वाचीन रूपों का दर्शन करता है, तब उस नयनों का नेत्रों के सार्थकता है। भर्गम इच्छते अन्वय करना, तावेव करो। तुलसीदास जी ने भी कह दिया ना एक जगह, आंख से यदि परमात्मा के अर्वाचीन रूपों का दर्शन नहीं होता है तो वो आंख मयूर के पंख के समान है। तुलसीदास जी ने कह दिया सीधे, मयूर का पंख भी ऐसे देखो तो क्या आग, बढ़िया आग जैसी है, लेकिन वो किसका रूप दर्शन कर सकता है? वो तीसरा बताया, तावे व करो, वही हाथ सार्थक हैं जिन हाथों से भर्गम सदा अर्चता, परमात्मा के अर्वाचीन रूपों का, विग्रहों का नित्य निरंतर सेवा करता हो, अर्चना करता हो, वही कर वही हाथ की सार्थकता है। अन्यथा सैव कृतकृत्य, उसी का जीवन धन्य है, यो कृतकृत्य सैव यो भर्गम सदा स्मरति सैव कृतकृत्यता। नित्य निरंतर जो भर्ग का अर्वाचीन रूप का स्मरण करता है चित्त से, वास्तव में उसी का जीवन सार्थक है। अन्यथा जीवन भी निरर्थक है, हाथ भी निरर्थक है, नेत्र भी निरर्थक है, और वाणी भी रसना भी निरर्थक है ना। भार्गम बदती सा रसना, वही रसना सही रूप में रसना है, और नयन इच्छते भार्गम इच्छते वही सार्थक है। यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। यही तो भक्ति का भाव है। एक एक अंग से परमात्मा की अर्चना होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, या इन्हीं इंद्रियों से जो कुछ भी हो इन साधनों से, वो सब का प्रयोजन केवल भर्ग की प्रसन्नता होनी चाहिए, उसी के लिए हो। ऐसे सुभाषित श्लोक तो बहुत से हैं, शास्त्र में भरा पड़ा है। शंकराचार्य जी और आगे कहते हैं, अति मृदुलौ मम चरणौ अति कठिनं ते मनो भवानी स, इति विचिकित्सां संत्यज शिव कतमासित गिरौ तथा वेशः। तथा आवेश, ठीक वो संधि प्रवेश आवेश एक ही चीज है, पाठांतर है, अर्थ एक ही है, प्रवेश कहो या आवेश कहो, प्र उपसर्ग है वेश प्रवेश, दो संबोधन है यहां। भवानी सह, भवानी के ईशा स्वामी, हे भवानी ईशा भवानी स, दूसरा संबोधन है नीचे के लाइन में शिवा कल्याण स्वरूप, हे भवानी स हे शिव। यदि विचिकित्साम आपके मन में, यदि शंकराचार्य जी कह रहे शिव जी के लिए, हे शिव हे भवानी स, यदि आपके मन में ये संशय शंका विचिकित्सा शंका संशय विशेष चिकित्सा विशेष संशय हो, क्या कैसी शंका कैसी संशय, अति मृदुलौ मम चरणौ, मेरा चरण बहुत कोमल है नरम है, अब ये दुष्ट बार बार मुझे अपने हृदय में बुला रहा है, और इसका हृदय पत्थर से भी बड़ा कठिन है, मेरा चरण अति नरम है कोमल है, और जो मुझे बुला रहा है कि मेरे हृदय में आओ मेरे हृदय में आओ, और उसका हृदय बहुत कठोर है कठिन है, अब ऐसे कोमल चरण को लेकर उसके हृदय में मैं कैसे चल सकता हूं, कैसे जाऊं और बुलाए जा रहा है, हैं? इस आशंका से आप मेरे हृदय में न आ रहे हो, हैं? तो ये शंका छोड़ दो हटा दो, यही कारण है मेरे हृदय में न आने का। कौन बोल रहे हैं? मेरे हृदय में रमण करने विचरण करने न आने का यही कारण है। कौन सा कारण? आप ये समझते होंगे कि मेरा चरण बहुत कोमल है, इस दुष्ट का हृदय बहुत कठोर है, अब मैं कैसे उसके हृदय में जाऊं, ये समझकर आप मेरे हृदय में नहीं आ रहे होंगे। यही बात है कि नहीं? बोले तुमने ठीक कहा, बात तो यही है। तो फिर मैं शिवा, हे शिवा, हे भवानी सर, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, कथम आसीत गिरव वेश? तब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि नंगे पांव उन हिमालयों की चोटी में तुम भटके कैसे? बोलो, नंगे पांव से हिमालय के उन कठोर पत्थरों में जब आप विचरण कर सकते हो, तो मेरा हृदय उस कठोर पत्थर जैसा तो नहीं है। ये बात सही है कि मेरा हृदय थोड़ा कठोर होगा, कठोर हुआ है, क्योंकि मेरी मां जब मरी तो मैं मां के साथ मर नहीं सका, वियोग सहन करके बैठ गया, तो हृदय तो तब कठोर हुआ है ना। कठोर नहीं होता तो मैं मां के साथ ही मर जाता। बोलो, आपका हृदय कठोर है कि नहीं? बोलो, नहीं तो मां मरी तो मां के साथ ही मर जाते। आपका हृदय कठोर है कि नहीं? पिताजी मरे तो क्या मरे तुम? बाप मरा, उन्हीं के साथ मर जाते ना। नरम होता तो पितृवियोग सहन कर पाते? कठोर था तभी पितृवियोग सहन करके बैठे हो। और आगे बढ़ो, तुम्हारा हृदय कठोर न होता, पति मर के चला गया, हम जिंदे रह पाते हैं? उसी कठोरता के चलते ही तो पति मर गया, फिर भी हम जिंदे हैं। हमारा हृदय नरम है, कोमल है, भावुक है। आज के न्यूज में एक पेपर में एक न्यूज आया, मैं पेपर पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता हूं ये बात नहीं है, पढ़ता हूं पेपर। न्यूज क्या आया? एक घर में देवरानी और जेठानी थे। हाँ, देवरानी जेठानी है। जेठानी 80 वर्ष की ढोकरी है, देवरानी 70 वर्ष की, तो 10 वर्ष का फर्क। अचानक देवरानी मर गई, पेपर का न्यूज है आज, अचानक देवरानी मर गई। और वही देवरानी उसकी सेवा कर रही थी बेचारी, वो मर गई। तो गांव वाले इष्ट मित्र सगे संबंधी आए तो औपचारिकता रोने लग जाते हैं ना, रोने लगे तो वो जेठानी 80 वर्ष की बूढ़ी भी रोने लगी, रोते रोते मर गई हुई ऑन द स्पॉट। उसी समय जब देवरानी मरी, इस बात को उसने सुना और सब आकर रोने लगे, वो भी रोने लगी तो रोते रोते मरी गई। तब तब सब दोनों का लाश एक ही साथ मरघट ले गए। ये राजस्थान की घटना, कितना भावुक होगी बेचारी, उसका वियोग सहन नहीं कर सकी। हृदय अली कठोर होता, हमारा होता तो हम क्या मरते उससे? कितना भावुक हुई होगी, सोची होगी मुझे मेरी सेवा तो वही करती थी, वही चली गई, अब हाय मेरा ख्याल कौन रखेगा? शायद ये भावना उसके दिमाग में आई होगी, जो हो वो संवेदना सहन नहीं कर सकी। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे शिवा, आप ये समझकर मेरे हृदय में आने में संकोच कर रहे हो, यानी डर रहे हो। किस बात को लेकर? मेरा चरण कोमल नरम है, इसका हृदय कठोर है, तो इसी हृदय में मैं कैसे विचरण करूं, कैसे जाऊं? यदि ये सोचकर नहीं आए हो तो हम आपसे पूछते हैं कि पहाड़ों के उन कंदराओं में, उन पत्थरों में आप चले कैसे, और यदि आप वहां चल सकते हो तो ये निश्चित है कि वो पत्थर जैसा तो मेरा हृदय नहीं है, तो आपको तो आना ही चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। यह अनुनय विनय है भगवान शिव के साथ शंकराचार्य जी का। आगे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, धैर्यांकुशेन निवृतम रवसादा कृष्य भक्ति श्रृंखलया पुरहर चरणालाने हृदयम हृदयम मदेभम बधान चिन यंत्री। यहां संबोधन है पुरहर। पुरम त्रिपुरम हरति इति पुरहर। पुरहर माने त्रिपुरासुर को जिन्होंने मारा, नष्ट किया, तो पुरहर। हे त्रिपुरहर, मैंने एक हाथी पाल रखा था। मेरे पास एक हाथी है, लेकिन वो हाथी अब, पहले तो बच्चा था, सीधा साधा था, बच्चा था, मैंने उसका नियंत्रण में रखा था। अब तो दिन प्रतिदिन वह बढ़ता गया बढ़ता गया, भरी जवानी में पहुंच गया, शरीर भी उसका बड़ा हो गया, ताकत भी और बढ़ गया, और शरीर और ताकत के बढ़ते उसके मस्तिष्क में मद भी बढ़ गया। तब ये उन्मद हो गया, उन्मद, मद अधिक हो गया ना, उन्मद हो, उन्मद हो गया, मदेभम, मद से उन्मत्त तो हो गया ये आदमी। अब इसको नियंत्रण करने की कोशिश करता हूं, नियंत्रण नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आता है। कोशिश करता हूं पकड़ूं, बांधूं, पकड़ में नहीं आता है। आपसे अनुरोध है महाराज, धैर्यांकुशेन निवृतम रवसा कृष्य भक्ति श्रृंखलया। भक्ति रूपी जंजीर से उसको रवसा, जबरदस्ती, तुरंत ही, तुरंत, विलंब नहीं करना, नहीं तो बहुत नुकसान कर जाएगा ये, बहुत नुकसान करेगा। रवसा शीघ्रम भक्ति श्रृंखलया, भक्ति रूपी जंजीर से, पहले तो उसके सिर में जाकर बैठकर धैर्य अंकुशी न, लोहे का एक अंकुश होता है, मावत उसके सिर में बैठता है और मारता है, उसे चुभोता है, वो उन्मत्त हुए हुए हाथी को वो उसके चमड़ी में घुसा देता है, लोहे का इतना बड़ा, हाँ, उसको अंकुश बोलते हैं, नहीं तो नियंत्रण नहीं होगा जब तक उसके फोपड़े में नहीं चुभेंगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं महाराज ये उन्मत्त तो हो गया है, धैर्य रूपी अंकुश से पहले तो उस पर नियंत्रण में लो और भक्ति श्रृंखलया रवसा आकृष्य तुरंत मत्ति रूपी जंजीर से उसको बांध डालो। कहां ले जाकर बांधे? आपके चरण रूपी खूंटे के साथ बांधो, लिया मेरा मन रूपी हाथी को धैर्य रूपी अंकुश का प्रयोग करके भक्ति रूपी जंजीर से उसको अपने चरण रूपी खूंटे के साथ बांध डालो। और इतनी से काम नहीं चलेगा महाराज, कभी कभी तो ये भक्ति जंजीर तोड़ भी सकता है और कदाचित भक्ति जंजीर ये तोड़ने लग जाए फिर ये उन्मत्त तो होगा, तब क्या करो? चिन यंत्र ही ऐसा बाड़ एक बनाओ, ऐसा कटघरा एक बनाओ, चिन यंत्र कि चैतन्य रूपी कटघड़े के अंदर उसको घेरो, भक्ति रूपी रस्सी टूट भी जाए तो भाग न भागे, बस तब ये न तुम्हारा नुकसान करेगा न मेरा नुकसान करेगा न किसी का नुकसान करेगा, अन्यथा ये मन रूपी हाथी चित्त रूपी हाथी मन रूपी हाथी समद मत से भर चुका है, ये कहीं धन मत से भरा हुआ है, कहीं पद मत से भरा हुआ है, कहीं गुण मत से भरा हुआ है, हैं? बोलो यही तो मत है, उन्मत्त तो होने के यही तो माध्यम है, मेरे पास इतनी गाड़ी, मेरे पास इतने घर, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतनी फैक्ट्रियां, मेरे पास इतने नौकर चाकर, ये सब मन रूपी हाथी उन्मत्त होने के लक्षण हैं। मैं इतना विद्वान, मैं गुणवान, मैं रूपवान, ये जो उन्मत्तता है मन रूपी हाथी की, ये उन्मत्तता है, ये खुद का भी नुकसान करेगा और यही उन्माद अन्य का भी नुकसान कर सकता है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है महाराज, इस हाथी को पहले नियंत्रण में करो, भक्ति रूपी जंजीर से, धैर्य रूपी अंकुश से तुरंत इसको बांधकर आकृष्य खींच कर लाकर चरणालाने आपके चरण रूपी खूंटे के साथ बांध डालो। किसको? हृदय मधेभ्रम बदान चिन यंत्र, और इसको चिन यंत्र चैतन्य रूपी यंत्र के अंदर बंद कर दो। और क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई, सिर्फ कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।